ओम शांति। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे आदरणीय दीदी जी डॉक्टर निरंजना दीदी, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं सुनाऊंगी जरूर कि ज्ञान की हर बात को किस प्रकार प्रैक्टिकल व्यवहार में लाया जाए ये आपके जीवन से सीखने को मिलता है। दीदी की वाणी में इतनी सरलता के साथ इतना प्रभाव है जो दिल और दिमाग को छू लेता है। तो ऐसी हमारी आदरणीय दीदी जी का हम बहुत हृदय के प्रेम भाव से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको 47 इयर्स हुए बाबा के सेवा के अंदर आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपकी आपको कदाचित संकल्प आता होगा डॉक्टर निरंजना दीदी कैसे आपने लौकिक पढ़ाई MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त की और अनेक मरीजों की सेवा भी आपने बहुत दिल से की, तन से भी स्वास्थ्य सबको प्रदान किया तो मन से भी तंदुरुस्त अभी आप बना रहे हो। आप कुशल वक्ता के साथ गुजरात का एक बहुत बड़ा सब जोन है बड़ौदा, और बड़ौदा के कनेक्शन के अनेक सेंटर आप कुशलता पूर्वक संभालते हो निमित्त बन करके। गुजरात जोन की मुख्य बहनों में से आप एक हो और बाबा के बेहद यज्ञ के बहुत समीप और विशेष रत्न हो। मेडिकल विंग के आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी हो। तो आज का विषय है दीदी का कर्तव्य के प्रति जागृति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार इसलिए बोलते हैं कि कोई बाकी नहीं रह जाना चाहिए, है ना? सबको कैसा लग रहा है पांडव भवन में? बहुत अच्छा चांस मिला है ना, पांडव भवन बाबा की और हमारी बड़ी दादियों की विशेष कर्म भूमि है। यहाँ के एक एक कण कण से, हर जगह से, है ना, बाबा के कार्य के साथ साथ हमें भी प्रेरणा मिलती है। हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, बन गए हैं ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और फिर क्या बनना है, हाँ? क्या बनना है? देवता बने, राजकुमार और राजकुमारियां। बाबा कहते सभी क्या से क्या बनने वाले हैं। ये विशेष बात जो आज के विषय की है वो दादी जानकी के लैकिंग का सब्जेक्ट है। दादी जानकी हमेशा कहती, मैं तीन बात रोज याद करती हूँ, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो आज का हमारा विषय है मुझे क्या करना है। हर ब्राह्मण बच्चे को हमेशा ध्यान में रहे कि मुझे क्या करना है। हमें जो करना है उसमें दो मुख्य बात आती है। आप लिखेंगे नहीं तो चलेगा, है ना? ध्यान से सुनिए, दो बात मुख्य होती है, एक स्व के प्रति और दूसरा सेवा के प्रति। हम सभी का जो कार्य है, हमें क्या करना है, उसमें सबसे मुख्य तो स्व के प्रति है। स्व के प्रति हमें जो करना है, बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बाबा बनाता है, और ब्राह्मण से फरिश्ता हमें बनना है, फरिश्ता से देवता आप ही बन जाते हैं, है ना। जो फरिश्ता बने वो तो देवता बन ही जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण बाबा हमें हाथ पकड़ के बना लेता है, वो बना मेहनत नहीं है, बना लेता है। पर बीच का जो जगह है ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनना, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये हमारा कार्य है, ये हमें बनना है। वैसे देखा जाए तो एक ही कार्य है, अगर हम संपूर्ण पवित्र और संपन्न बन गए, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है हमें, देवता बनना है। देवता बनने की क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, नक्की की हुई क्वालिफिकेशन है, है है ना, क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परम, सबको पता है ना। बाबा ने ये भी सभी को एकदम अंदर में पक्का करा दिया है। जैसे कोई भी कार्य करना होता है तो वो कार्य हमारे, जिसको हम कहते हैं ना भाई, हमारा कार्य करने का जो क्षेत्र होता है, कोई ऑफिस में काम करता है तो कार्य करने के लिए टेबल होता है, वर्किंग एरिया, कार्य करने का जगह, टेबल। तो वहां पर क्या करते हैं कि जो मुझे करना है उन बातों को सामने रखते हैं कि ये टारगेट है। हर एक को आजकल क्या किया जाता है, टारगेट दिया जाता है, आपको यहां पहुंचना है, आपको इतना करना है। तो वो टारगेट क्या किया जाता है, हमेशा आंखों के सामने रखा जाता है और उस अनुसार फिर हमारे पुरुषार्थ की गति बनती जाती है। तो हमें बाबा ने क्या टारगेट दिया है, सर्वगुण संपन्न, तो वो हमेशा हमारे दृष्टि के सामने रहे कि मुझे क्या करना है। दादी जानकी हमेशा कहती, मैं ध्यान रखती हूं मुझे क्या करना है, हम किस लिए बाबा के बने हैं, है ना, हम किस लिए बाबा के बने हैं, वो हमेशा ध्यान रहे। बाकी जो सेवा का सब्जेक्ट है वो एडिशनल है। बाबा का काम ये है कि बाबा हमें ही इतना संपन्न बना दे, हम बन जाए। बाबा का, अगर आप बन गए तो दुनिया तो बन जाएगी, बन जाएगी हमारे से ही। हमने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, हमने अपना भाग्य बना लिया, तो हमें भाग्य देने के लिए दुनिया को भी बदलना पड़ेगा, है ना। परंतु जैसे बाबा कहते, बाबा मुरली में कहा ना, बाबा रोज रिफ्रेश करने के लिए आते हैं, रोज रिफ्रेश करने आना पड़ता है, क्योंकि रोज हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं, भूल जाते हैं बाबा की कही हुई बातें, थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा रोज सुबह में फिर हमें याद दिला देता है हमें क्या करना है। तो टाइम लगता है, बच्चों को संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में समय लग रहा है, वो समय दरमियान और क्या करे, और क्या करे, नहीं तो कहा जाता है भी खाली मन शैतान का घर। इसलिए बाबा ने हमें एंगेज करने के लिए, काम देने के लिए ये दूसरा सब्जेक्ट दिया, कौन सा, सेवा का। कहा जाएगा कि बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पर कि बाबा ने सेवा के लिए हमारी जरूरत बना दी है, है नहीं, है ना, है नहीं, क्योंकि वो तो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए विश्व का परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है, समय भी नहीं लगेगा, बात भी बड़ी नहीं है, परंतु क्योंकि क्योंकि हमारा स्थान बनाना है, हमारा भाग्य बनाना है, इसलिए बाबा ने, जैसे कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर उनकी अपनी फैक्ट्री होंगी, समझो अपनी इंडस्ट्री है, अपनी फैक्ट्री अथवा अपनी स्कूल है, बहुत बड़ी कॉलेज है, तो अपने बच्चे के लिए क्या करता है? अगर जगह नहीं है ना तो भी क्या करता है, क्रिएट कर देता है, बना देता है। मेरे बेटे को देना है ना तो भी जगह नहीं होगी तो भी बना देगा, असिस्टेंट बना देगा, डेप्यूटी बना देगा, कुछ ना कुछ करके जगह बना देगा। वैसे बाबा ने भी क्या किया है, वो हमारा बाप है, वही भाग्य भी दाता है, तो किसका भाग्य बनाएगा? सबसे पहले अपने बच्चों का ही बनाएगा ना, इसे बाबा ने हमारी जगह बना दी है। इसीलिए फिर बाबा ने हमें जो कार्य दिया है, इसमें हमारे दो कार्य बन जाते हैं, एक तो हमें स्वयं को संपन्न बनाना है और दूसरा हमें विश्व का परिवर्तन करना है। निमित मात्र, तो स्वयं के परिवर्तन के लिए हमारा सतत कॉन्स्टेंट ध्यान रहे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, कहलाते हैं ना, तो अभी हमारा कर्तव्य बन जाता है बाबा के ज्ञान को खरा सिद्ध करने के लिए, कि भी बाबा, फॉर एग्जाम्पल, बाबा ज्ञान का सागर है। हम कहते लोगों को कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से मिलते हैं, हम कहते मिलते हैं, वो तो हमारा मुंह ही देखते रह जाते हैं, आप भगवान से मिलते है ना, लगता है ना आश्चर्य। मुझे याद है कि एकदम शुरू शुरू में हम ज्ञान में चल रहे थे, पहली बार भट्टी यहाँ की थी मधुबन पांडव भवन में, 15 दिन की भट्टी करके जा रहे थे, क्या नशा था अंदर में, है ना, ट्रेन में जा रहे थे तो हम 3-4 बहने बैठी थी सामने, बाई चांस साधु संत लोग 3-4 बैठे थे, तो बस हम तो आपस में बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बात बात में हमने कहा हमको तो भगवान मिला है, तो इतना हंसने लगे, बोला तुम छोटी छोटी बच्चियों को भगवान मिला है, हंसने लगा, हाँ भगवान मिला है, जैसे हम आपसे बात करते वैसे हम भगवान से बात करते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा तो फिर हमको भी करवा दीजिए, हम करवा देंगे, उसमें क्या है ना, हम जैसे बात करते हम तुमको भी करवा देंगे, पर हाँ कंडीशन है कि आपको भाई 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, पवित्रता की धारणा करनी पड़ेगी, तभी बाप भगवान आपसे मिल सकता है। तो लोगों को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान मिलना ये कोई आसान बात है, लोगों ने इतनी तपश्चर्या की, इतनी मेहनत की तो उनको नहीं मिला, और आपको भगवान मिल गया। हम कहते हैं ना भगवान मिला हमको, सब कहते हैं भगवान मिला। कोई एक माता के पास दूसरे कोई कल्ट वाली बहन आई कि आप आइए हमारे पास, आप आइए हम आपको भगवान का दर्शन करा देंगे, तो वो माता कहती दर्शन क्या, मैं तो रोज दर्शन करती हूँ, तुम क्या कराएगी मेरे को दर्शन। तो उनको आश्चर्य, तुम रोज दर्शन करते, हाँ हम भगवान से मिलते हैं, बात करते हैं, रोज हम उनकी मुरली सुनते हैं, आप क्या सुनाएंगे। तो हर एक को ये नशा है, हर एक को ये नशा है कि मुझे भगवान मिला है, तो मेरे फिर जीवन से, है ना, मेरे चेहरे और चलन से क्या देखना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है। ये फिर मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मेरे चेहरे और चलन से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है। मुझे भगवान मिला है और मेरा चेहरा अगर मायूस है तो लोग क्या समझेंगे, तुम्हें भगवान मिला है,
तुम तो बोलते थे तुमको भगवान मिला, क्या हुआ? हम किसी परिस्थिति में अगर रोने लग जाए तो कोई क्या कहेगा? क्यों, तुमको तो भगवान मिला है ना, भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, क्या हुआ? तो सबसे पहली बात हमारी ये हो जाती है कि बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, हम जो रोज मुरली सुनते हैं, उन सभी बातों को हमें जीवन में धारण करना है। हमारा कर्तव्य बड़ा इसलिए हो जाता है, हमें कोई पर्सनल नाम से नहीं पहचानता है, नहीं पहचानेगा, पर क्या कहते लोग, ये ओम शांति में जाने वाले हैं, ये तो पहचानते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये ओम शांति में जाते हैं, ये सबको पता है। तो जो बाबा के ज्ञान में आते हैं उनकी अपनी पहचान है, पहचान हमें नहीं पता होगा पर उनको सब कुछ पता है दुनिया वालों को कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। हाँ, क्या वाइट ड्रेस देख के बताएंगे, हमारी धारणाओं से बताएंगे, है ना? आप जाएंगे आपके पहले ही बताएंगे, नहीं नहीं ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले किसी के घर का खाएंगे नहीं, अपने आप बता देंगे, है ना? इनकी अपनी धारणा है। तो हम क्या बन जाते हैं बाबा का बनने के बाद, हम नहीं रहते हैं, हम संस्था बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? हम स्वयं में एक संस्था बन जाते हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है, हमारा जो भी कार्य है, वो जैसे कि संस्था का कार्य बन जाता है। आपने अनुभव किया होगा अपने घर में, परिवार में भी, छोटे बच्चे भी अगर आपने क्रोध कर लिया तो क्या कहेंगे कि आपको सेंटर में ऐसा सिखाते हैं, कहते हैं ना, पता है उनको कि बाबा क्या कहते हैं। एक बार कहा प्रोग्राम था और प्रोग्राम का सब्जेक्ट था क्रोध के पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो एक छोटे बच्चे का फोन आया बहन के पर कि भाई आपका प्रोग्राम कितने बजे है, तो बच्चे का आवाज तो पता चल जाता है, छोटा बच्चा बोल रहा है, बोला आपको आना है क्या? बोला नहीं मेरे को नहीं आना है, मेरी मम्मी को भेज देना है। वो वैसे तो सेंटर में जाती है पर अभी उसका छूटा नहीं है, इसके लिए मैं पूछता हूं। तो हमें देखते हैं, अभी 2-3-4 साल पहले की बात है, ऐसा हुआ शांतिवन में, जैसे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप आता है, कोई क्या धारणा करता है, कोई कभी बाय चांस नहीं भी करता होगा, तो कोई एक बंदा अथवा नहीं भी आता होगा, बेच पहन लिया होगा, बेच पहन के कोई अपने शांतिवन के आजू बाजू के होटल में भोजन करने चला गया, तो सारे लोग बोला अच्छा तुम्हारी संस्था ने बदल दिया अभी नियम। अब देखो गया एक व्यक्ति और क्या इम्प्रेशन आया, अच्छा तुम्हारी संस्था, उनको नहीं बोला, हमारे जैसे लोगों को बोला कि तुम्हारी संस्था ने अभी थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है ना, धारणाएं बदल दी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बोला हाँ एक तुम्हारा बंदा आया था। अब देखो तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता है, परंतु जैसे कि हमारी एक संस्था है वो बन जाता है। तो हमें उस बात का ध्यान रख करके हमारा हर कार्य करना होगा कि हम बाबा की पहचान है, हम कौन है, क्योंकि बाबा तो दिखता नहीं है इन आंखों से, कैसे दिखता है, हमारे थ्रू, हमारे द्वारा। तो हम सभी जैसे कि बाबा की पहचान है, इस पहचान को बना के रखना ये हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हम बाबा की सही पहचान को लोगों तक पहुंचने दे। दूसरी बात कि हमारा अपना निजी पुरुषार्थ सतत चलता रहे, जिसको बाबा कहते हैं चेकिंग एंड चेंज, अंत तक हमें अपने पुरुषार्थ में रहना है, हमें निरंतर तमो प्रधान से सतो प्रधान ताकि तरफ चलते जाना है। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारा कर्म करने का तरीका, हमारा व्यवहार हमें सतत सत्व प्रधान श्रेष्ठ बनाते जाना है। अंत तक बाबा ने क्या कहा है, हम जब तक जीते हैं तब तक पढ़ते रहना है, जब तक जीते हैं तब तक पढ़ते रहना अंत तक। क्योंकि बाबा ने जैसे आज कहा कि भाई परीक्षाएं तो अंत तक आती रहेगी, जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना और परीक्षाएं आती जाती हैं। तो हमें अपने पुरुषार्थ की तरफ सतत ध्यान रहे कि कल हम क्या थे और आज क्या है। स्पष्ट रूप से परिवर्तन हमें स्वयं भी नजर आना चाहिए और हमारे आसपास के लोगों को भी नजर आना चाहिए। परिवर्तन हो जाता है ना, मन में आप अनुभव करते होंगे कि भाई कुछ साल पहले मेरा स्वभाव था वो अलग था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, आज परिवर्तन हो गया। हो सकता है कभी किसी को ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, असंतुष्टता का भाव आता होगा, आज वो परिवर्तन हो गया। तो हमें जैसे बाबा ने कहा है वैसे बनने का हमारा अपना निजी कर्तव्य है। अच्छा, उस कर्तव्य में विघ्न रूप जो है, कल आपने अव्यक्त वाणी सुनी होंगी है ना, तो कहा कि सब कुछ जानते हुए सब कुछ करते हुए फिर क्या होता है जो बोझ महसूस करते हैं, क्या होता है। तो ये परीक्षाएं हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, परिवर्तन होता जाता है, हम पुण्य कमाते जाते हैं, पर फिर भी बीच बीच में जो विघ्न बनता है वो क्या बनता है। बाबा को इसलिए रोज रोज रिफ्रेश करना पड़ता है, क्या विघ्न बन जाता है कि हमारा मन जो है वो ज्ञान की बातों के साथ साथ दुनियावी बातों में भी चला जाता है। देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों का महत्व हमारे मन में बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा को रोज रोज एक नए प्रकार का ज्ञान का पॉइंट देके समझाना पड़ता है। जैसे आज की मूली में कहा, क्या कहा, बच्चे दुनिया की कोई बातों में तुम्हारा मन नहीं जाना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये कब्रिस्तान है। जैसे गीता में कहा ना अर्जुन को, उन्होंने पहले बहुत कहा, बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि अरे ये सामने मेरे गुरु है, मेरे सभी भाई है, घर वाले हैं, मित्र है, तो क्यों मैं उसके सामने युद्ध करूं, क्यों मैं मारूं। तो क्या कहा, ये मरे पड़े हैं, तुम नहीं मारोगे तो भी और मारोगे तो भी, ये तो मरे पड़े हैं, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये छूटने वाला है। तो बाबा कहते क्यों नहीं फिर थोड़ा समझदारी रख के पहले से ही क्यों ना बुद्धि योग हटा दे। तो अगर हमारा बुद्धि योग छोटी छोटी बातों में रहता है, आज बाबा ने बार बार मूली में कहा कि छोटी छोटी बातों में अल्प समय के सुख के कारण अगर हमारा मन उसमें चला जाता है, हमारा भाव उसमें चला जाता है, अल्प समय का सुख हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, थोड़ा सा भी बदल देता है तो हमारे पुरुषार्थ की गति में अंतर आ जाता है। इसलिए हमें सतत जागृत रहना है, ज्ञान की मूल बात को पकड़ के रखना है, करना सब कुछ है, घर गृहस्थ में रहना है, हर कार्य व्यवहार में रहना है, परंतु क्या, बुद्धि योग बाप के साथ। बस दूसरी बात, बाबा ने फिर हम बच्चों को निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया कि तुम बच्चे ही बाबा के साथ विश्व का परिवर्तन करने के लिए निमित्त हो। कितना बड़ा कार्य बाबा ने सौंपा है, पर उसके पीछे भी लक्ष्य क्या है? क्यों बच्चों को ही कहा है? आप देखो दुनिया में क्या होता है, कोई भी संस्था काम करती है ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो उसमें रहते हैं, धन का सहयोग फिर वो और लोगों से मांग मांग करके इकट्ठा करते हैं, है ना? और काम करने वाले किराए पर रखते हैं, उसको फिर ऑन पेमेंट काम कराते हैं। तन भी अलग लोगों का लगता है, मन भी अलग, धन भी अलग, तो भाग्य भी तीनों का अलग अलग बनेगा, है ना? बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या किया है, बहुत फेवर की है। एक तो हमें अपना बनाया, हाँ, फिर दूसरा क्या किया, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा और धन भी तुम्हारा। कितनी बड़ी बात है। आज बाबा का गरीब बच्चे ही शाहूकार बनते हैं, पाई पाई। जैसे दो चार दिन पहले बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि दुनिया वाले, गवर्नमेंट वाले, दुनिया वाले करोड़ करोड़ इकट्ठा करके विश्व का नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, और तुम बच्चे पाई पाई इकट्ठी करके विश्व का मालिक बन रहे हो। पाई पाई इकट्ठी करके तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। ये बाबा की संगम युग के अंदर बहुत बहुत बड़ी फेवर है। हमें याद है कि शुरू में जब हम प्रदर्शनी करते हैं, मेला करते हैं, तो हमारे ये भाई बहन होते हैं ना, जो खड्डा भी खोदेंगे, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, मेहनत का काम, लेबर का काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कर रहे थे। तो एक भाई के पास दूसरा एक भाई आया, लेबर था, उनको बोलता है कि आप लोग भी कर रहे हैं तो हमको भी काम पे रख लीजिए। और जिसके पास गया वो कौन था पता, चीफ इंजीनियर था, गवर्नमेंट के ऑफिस में चीफ इंजीनियर था, जिसके हाथ के नीचे हजारों लोग काम करते हैं। तो उसने बोला कि भाई हम यहाँ जो काम करते हैं ना, हम पैसा दे के काम करते हैं, क्या कर, पैसा लेके नहीं करते हैं, हम दे के काम करते हैं। आपको करना है? बोला नहीं, मुझे तो चाहिए ना पैसा, इसलिए काम करना चाहता हूँ। बोला नहीं, यहाँ तो ऐसे होता है, हम अपना तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। इसे क्या होता है, एक ही व्यक्ति का टोटल भाग्य बनता है, क्योंकि बाबा गरीब बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं। शाहूकार को एक आ जाए, आप देखो दुनिया में तो करोड़ों का काम चलता है ना, करोड़ों की बातें चलती है, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे ऐसे करोड़ों की बातें चलती है। हमारे यहाँ कभी ऐसे करोड़ों की बातें नहीं चलती है। ऐसा ही वो करोड़पति आ जाए, बोलते हम आपको 100 करोड़ दे देते हैं, तो बस फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी, रहेगी वहां 10 रुपया कौन लेगा? तो आज बाबा ने हमारी ये फेवर कर दी है, तो इसीलिए फिर ये हमारा, बाबा ने जब इतना फेवर किया है हमारी, हमारे ऊपर बाबा ने आधार रख दिया है कि हम तुम्हारे द्वारा ही विश्व का परिवर्तन करने वाले। बाबा ने अपना नाम क्या कहलवा दिया, गरीब निवास कहला दिया। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारी पाई पाई भी बाबा के यज्ञ सेवा अर्थ उपयोग हो, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा हर संकल्प, हमारा समय, हमारे शब्द, हमारा धन, हमारे पास जो भी है खजाना, वो सब खजाना किसके लिए है? किसके लिए है? बाबा की सेवा के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। तो सतत हमारा संकल्प उस दिशा में चले कि कैसे हम किसी को बाबा का परिचय दें, कैसे हम किसी को समझाएं, कैसे हम किसी को मदद करें कि वो अपना जीवन पवित्र जीवन बना दे, पतित से पावन बन जाए। ये हमारा सतत संकल्प चलना चाहिए। आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात मुरली में बताई है कि दुनिया में लोग पुण्य कमाने के लिए धर्मशालाएं बनाते हैं। आज कहा ना, धर्मशाला बनाते हैं, जहां जहां तीर्थ स्थान होता है वहां पर क्या करते हैं? धर्मशाला बनाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तीर्थ स्थान कौन सा है? तुम्हारे सभी सेंटर्स क्या है? तीर्थ स्थान है। तुम्हारी सभी पाठशालाएं, सेंटर, सभी क्या है? तीर्थ स्थान है। तो अभी हमें जो भी करना है वो किसके लिए करना है? तीर्थ स्थान बनाने के लिए उपयोग करना है, ताकि वहां आकर के रियल में कोई आत्माएं पतित से पावन बन सके। बाबा ने कहा पानी से तो कोई बनेगा नहीं, वहां मंदिरों में जाकर के अमृत लेते हैं, है ना, चरणामृत लेते हैं, कहते उससे हम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, वो तो पानी है, पानी से कैसे पावन बनेंगे? किससे बनेंगे पावन? ज्ञान से, ज्ञान गंगा से। ज्ञान गंगा के द्वारा ही आत्मा पावन बनती है। तो फिर हमारा कार्य ये है बाबा के साथ साथ। बाबा का कार्य जो है, आप देखो बाबा का कार्य सतत ये है ना। संकल्प भी बाबा का उस दिशा में चलते थे। आपने सुना होगा कि शुरू से जब पांडव भवन था, केवल पांडव भवन था तो बहुत थोड़े बच्चे थे, है ना, भारतवर्ष में ही सेवा थी, पर बाबा का संकल्प क्या था? विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश जाएगा। बच्चे तुम लोग सभी जाएंगे विश्व के कोने कोने में, सब जगह बाबा का संदेश फैलेगा। ये क्या है? संकल्प। हमारी दादी प्रकाशमणि जी जो यहां बैठे बैठे बोलती थी कि लाखों का प्रोग्राम करो, है ना, लाख लाख का प्रोग्राम जो हुआ, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, यहां बैठे बैठे कोई करना चाहे न चाहे, दादी सतत उसके पीछे, तुम करो ना। तो दादी हम नहीं कर सकते, लाख कैसे इकट्ठा करें, हम तो नहीं कर। दादी अरे करो हो जाएगा। दादी बैठी है ना, दादी का दादी मदद करेंगी, बाबा मदद करेगा, तुम करो। तो दादी कुछ करने नहीं गई, परंतु क्या किया? संकल्प किया कि आपको करना है। तो कितना नहीं तो असंभव लगता था, लाख की पब्लिक कैसे इकट्ठी होंगी, क्या होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, परंतु वो हुआ। मेगा प्रोग्राम जो दादी ने कहा अनेक जगह, क्या हुआ? संकल्प। तो बाबा कहते सबसे पहली बात है संकल्प। तो अभी जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चों की जिम्मेदारी है। अब ये कर्तव्य किसको सौंपा है? बच्चों को सौंपा है कि बच्चों की जिम्मेदारी है। बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि बाबा ने तुम बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर दिया, किया ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अभी तो सब बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। आपने अगर कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी से जाते हैं तो आपका इम्प्रेशन और सुधर जाएगी। अच्छा आप वहां जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते, ब्रह्मा कुमारियां बहुत काम करते, बहुत मेहनत करते। कई संस्था वाले हमें कहते हैं कि आप क्या है कि आप थोड़े हम लोगों की भी दे दो ना, आपके भाई बहन दे दो ना, क्योंकि आपके भाई बहन बहुत सिंसियर होते हैं, दिल से काम करते हैं, प्यार से काम करते हैं। साथ साथ उनको ये नहीं पता है कि सब फ्री काम करते हैं, है ना, वहां तो कोई करता ही नहीं है फ्री। तो बाबा कहते हैं मैंने आपका नाम तो अभी सब जगह पर प्रख्यात कर दिया, अब क्या बाकी रहा है, है ना, बाबा का नाम। बाबा ने हमारा नाम तो रोशन कर दिया, बाबा कहते अभी क्या करना है, बच्चों का कर्तव्य क्या है, बाबा का नाम रोशन करना है। स्वयं भगवान सृष्टि पे आए हैं और उनका कार्य चल रहा है, ये प्रत्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसको दी है बाबा ने, हम बच्चों को दिए, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये कार्य करने के लिए हमें कुछ धारणा करनी पड़ेगी। सबसे पहली धारणा क्या है, सेवा कौन कर सकता है, जिसके अंदर सतत उमंग और उत्साह है। सबसे पहले क्या चाहिए, उमंग और उत्साह, उमंग उत्साह चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। दूसरी बात क्या चाहिए, अथक सेवादारी, अथक सेवादारी, थकने की बात नहीं। इसलिए हमारा कौन सा गायन है, कौन सा गायन है, अथक बन के सेवाधारी बनने की यादगार कौन सी है भक्ति मार्ग में, दधीचि ऋषि, दधीचि ऋषि के लिए क्या कहा जाता है, हड्डी हड्डी सेवा करने वाले, कहा गया कि भाई तुम्हारी हड्डियां तुम दे दो। भक्ति में तो कहा कि असुरों के वार से बचने के लिए देवताओं ने कहा कि भाई दधीचि ऋषि हुआ कि आपके हड्डियों का हथियार बना के हम मारेंगे तो वो मरेंगे। तो वास्तव में कोई हड्डियों देने की बात नहीं है, परंतु हमें बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी देनी, कैसे देंगे हड्डियां, कैसे देंगे, अथक बन करके। आप देखो जब आप सेवा करते बहुत थक जाते हैं तो क्या होता है, आप जब बहुत थक जाते टू मच तो क्या होता है, आपको मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है, क्या कहते हैं, मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है। अब वो दुखती हुई हड्डियों से जो आप सेवा करेंगे ना, वो हड्डी हड्डी सेवा है। इतना आप थक गए हैं, हड्डी हड्डी दुख रही है, उसके बाद आपको कोई सेवा कह रहा है तो क्या होगा, क्या आप करेंगे, करेंगे कि गुस्सा आ जाएगा, अरे आपका ध्यान नहीं है, हम इतना थके हुए हैं, सुबह से काम में लगे, अभी और आप एक काम बता रहे हैं, कैसी बात। तो उसके बाद जो सेवा होती है ना, वो है हड्डी हड्डी सेवा, दधीचि ऋषि के मिसाल। तो वो तैयारी चाहिए, क्या चाहिए, वो मन में सतत रहना चाहिए कि ये जो सेवा, और हमें फायदा ये है कि खाली सेवा कार्य नहीं करना है, परंतु सेवा कार्य के साथ साथ क्या जुटा हुआ है, हमारा भाग्य जुटा हुआ है। बाबा अपने लिए नहीं करवा रहे, किसके लिए करवा रहे हैं, हमारे अपने लिए करा रहे। तो सेवा करने का मौका मिलना वो भी भाग्य की निशानी है, भाग्यशाली को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। आप एक बार बहुत अच्छा काम करो, सिंसियरली करो, तो दोबारा आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। संगम युग के अंदर कर्म का जो फल है वो कौन सा है, दोबारा कर्म करने का चांस, वही कर्म का फल है। आप क्या काम करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस प्रकार करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद आता है जैसे भक्ति में सेवा कार्य के लिए किसका यादगार है, हनुमान का, पता है ना, हनुमान का है। हनुमान सतत सेवा में रहता था। एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि हनुमान की सेवा को देख करके सबको ईर्ष्या होने लगी, सीता माता को भी और उनके भाई को भी, लक्ष्मण आजू बाजू वाले। कहते हैं ये हनुमान ही सारा दिन सेवा करता रहता है, अभी हम कुछ ऐसी युक्ति करें जो इनको छुड़ा दे। हाँ, तो सबने नक्की कर लिया कि हम सभी ड्यूटी बांट लेते हैं और हनुमान को थोड़ा फ्री कर देते हैं आराम के लिए, भी तुम आराम करो। तो सबने मिलके ऐसा प्लान बना दिया, सबने ड्यूटी बांट लिया, ये करेगा ये करेगा। और हनुमान को बुला के बोला कि देखिए आपने बहुत सेवा की, थक गए होंगे, अभी आराम करो, हम सभी सब सेवा करेंगे। हनुमान को लगा मेरी क्या भूल हुई जो मेरे को सेवा से हटा दिया गया है। मायूस हो गया बेचारा, निराश हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो सेवा दो। बोला ना ना, हमने सब ले लिया, अभी तेरे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर सोचता है कि देखो ऐसा करो, मेरे को एक सेवा दे दो, छोटी सी सेवा दे दो, कि जब राम जो है ना वो उबासी खाएगा तो मैं चुटकी बजाऊंगा। तो सबने एक दूसरे के सामने देखा कि ये देने में कोई हर्जा नहीं है ना, उबासी सारा दिन थोड़ी खाएगा। ठीक है करो वो सेवा। तो फिर हनुमान तो सारा दिन बैठा रहे, बोला अरे तू अभी तो जा, अब तेरी कोई सेवा नहीं। बोला नहीं, वो कब उबासी आवे क्या पता है ना, और उबासी आवे मैं ना हूं तो फिर क्या होगा, इसीलिए मेरे को तो सारा दिन उनके पास बैठे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो लोग परेशान कि ये तो बंदा भी नहीं हट रहा है। बोला नहीं जाओ तुम, कुछ होगा तो हम ध्यान रख देंगे, तुमको बुला देंगे फटाफट। बोला ठीक है, गया। हनुमान था नहीं और राम को उबासी आ गई, उबासी आके मुंह खुला हो गया और खुले का खुला रह गया। सब परेशान, हनुमान है कहाँ, मुंह बंद ही नहीं हो रहा है राम जी का। सब ढूंढ ढांड के ले आए हनुमान को कि भाई हम हार गए, तुम जीत गया, भाई तुम अपनी सारी सेवा वापस ले लो। तो सेवा क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुम कितना प्यार से करते हो वो इम्पोर्टेंट है। सेवा में क्या चाहिए, प्यार से सेवा करने की बात है, जबरदस्ती नहीं, प्यार से और समर्पण भाव से। सेवाधारी इतने थे, उनके भाई थे, सीता माता थी, सब थी, पर किसी ने अपनी छाती फाड़ के राम को दिखाया नहीं। बोला कॉन्स्टेंट सतत, उसके आगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। आपको ध्यान होगा कभी सेवा में हनुमान की सेवा से खुश होकर के सीता माता ने उसको हीरों का हार दिया है ना, हनुमान ने क्या किया, तोड़ तोड़ के फेंक दिया, हीरे में राम है नहीं है। अरे तुमने इतना मूल्यवान हीरा फेंक दिया। बोला पत्थर और हीरे में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। क्यों, किस बात का महत्व था, उनका महत्व था। तो हमारे जीवन में भी महत्व जब बाबा का रह जाता है तो हम दुनिया में कोई बातों में हमारा ममत्व रहेगा नहीं। तो सेवा करने के लिए क्या चाहिए, अथकपना चाहिए, प्रेम भाव चाहिए, समर्पण भाव चाहिए और ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए कि कोई सेवा बड़ी नहीं है, कोई सेवा छोटी नहीं है। जो मुझे सेवा मिले वो सेवा मुझे प्यार से और सिंसियरली करना है। जो सेवा मिले, कई भाई बहन आते हैं सेंटर में, कहते बहन हमारे लायक सेवा हो तो दे देना। हमें क्या पता तुम्हारे लायक कौन सी सेवा है ना, क्या पता। सोचते हैं कि ये भाई को भी क्या सेवा दे, एकदम अप टू डेट बन के आया है, कोई कौन सी सेवा दे। भाई साहब अभी आज नहीं, फिर दोबारा बताएंगे, चांस लगेगा सेवा में, नहीं लगता है। तो मेरे लायक सेवा नहीं, जो सेवा है वो दे दो, मेरे लायक सब सेवा है। हमें सेवा के लायक बनना है, क्या करना है, हमें ऐसा बनना है, हमारा स्वभाव ऐसा बनाना है जो निमित्त है वो हमें बिना हिचकिचाहट के कोई भी सेवा सौंप सके। ये इम्प्रेशन हमारी बन जाए कि इनको कोई भी सेवा दे दो बस। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार यहाँ पांडव भवन में एक कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मतलब उस समय पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो ड्यूटी बांटते थे सभी सेंटर्स को। उस समय हमें ड्यूटी मिली थी भोजन पिरसने की ड्यूटी मिली थी, पर उसमें भी दो पार्ट थे। एक थे वीवीआईपी को, ऊपर में वीवीआईपी सेक्शन था जिसमें स्पीकर्स और वीवीआईपी को भोजन था, और नीचे बाकी सब डेलीगेट्स का भोजन था। तो हमारी ड्यूटी नीचे डेलीगेट्स में थी, तो ड्यूटी बजाते थे सिंसियरली, भाई बहन भी सभी एकदम सिंसियर ड्यूटी बजाने वाले। पता नहीं क्या था उसमें, तो एक हवा फैल गई कि स्पीकर लोग भी नीचे ही आने लगे। हमने कहा भाई आपका ऊपर ना नाम तो यही करेंगे। अच्छा, ये करते करते बात पहुंच गई दादी जी के पास, बड़ी दादी थी उस समय। तो दादी जी के पास बात पहुंची कि क्या है, सब लोग क्यों नीचे ही भोजन करने जाते हैं। दादी कहे मैं खुद देखने जाऊंगी, है क्या, क्या कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं था, परंतु अथक बन करके सेवा करने की जो वृत्ति है वो इतना प्रभावित कर गई कि उनके लिए बाकी स्पेशल व्यवस्था थी, सब कुछ था। तो ये बोलते नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पसंद है बस। तो व्यवस्था इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु तुम्हारा भाव अथक बन के है ना, और जानबूझ के, शुरू की बात थी, जानबूझ के परेशान करने के लिए लोग क्या करते थे, पहले मांगेंगे दही हमको मिलेगा बहन जी, भाई बहनों को हाँ मिलेंगे क्यों नहीं, अच्छा फिर अभी थोड़ी सी चाय की इच्छा है तो चाय मांगेंगे, अच्छा हमें अभी भोजन में टमाटर है, बिना टमाटर के सब्जी चाहिए मिल सकती है क्या। इतनी जानबूझ के कि गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, क्या होते हैं, कर करके देख लिया। बोला नहीं ये लोग तो बहुत प्यार से कहते हैं, ये इतना ज्ञान हम सुन रहे हैं, ज्ञान हमारी बुद्धि में जावे ना जावे, पर हम पिरोसना सीख जाए ना तो भी हम सोचे हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो कार्य जब हम करते हैं, तो मैंने कहा कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हमारे साथ जो सेवा में आए थे वो सभी बहुत बड़े बड़े लोग, कोई डॉक्टर, कोई चीफ इंजीनियर, कोई बहुत बड़े व्यापारी, सभी बर्तन मांज रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे, खुशी प्यार। तो हमें जब कार्य प्रति, बाबा ने बहुत बड़ा कार्य हमें दिया है, हमें कार्य प्रति उतना ही प्यार से करना सीखना है। अच्छा, उसके बाद एक धारणा है, कौन सी है, ये समझना है कि मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। मैं कौन हूं, ये स्वमान हमें याद रखना होगा, अच्छी तरह बाबा का कार्य करने के लिए स्वमान याद रहे कि मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। अर्थात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिम्मेदार अर्थात क्या, मुझे करना ही है, मुझे करना है। हो सकता है बाकी 50 लोग करने वाले हो, परंतु किसको करना है, मुझे तो अवश्य करना ही है। सेंटर का कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा या बड़ा, बहुत लोग है करने वाले, ऐसा नहीं, क्या मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार है ना। आप सोचिए कि आपके अपने लौकिक परिवार का कोई प्रसंग आपके बिना चल सकता है, चल सकेगा। आपके भाई के घर शादी हो, आपकी बहन के घर शादी हो, आपके अपने घर कुछ प्रसंग है और आप ना हो, चलेगा, क्या कहेंगे, चलेगा। तो ना 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 ना, बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो हमारा परिवार कौन सा है, हमारा घर कौन सा है, एक्चुअली हमारा घर कौन सा है, बाबा का घर हमारा घर है, सेंटर हमारा घर है, और सेंटर का हर कार्य किसका है, मेरा है। तो अगर आप अपने को जिम्मेदार समझेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मेरे बिना तो नहीं चल सकता, और किसी के बिना चल सकता है, तो मेरे बिना, ऐसा मन में महसूस था, है ना। मुझे याद है कि शुरू में लोग हमारे पर बहुत हंसते थे, इसलिए कि हम बाबा मिलन में, हर मिलन में आते रहे, हर मिलन में आते रहे, है ना। इसे लोग कहते क्यों तेरे को हर मिलन में जाने की क्या जरूरत पड़ी है। मैंने कहा बाबा को मेरे बिना नहीं चलता है ना, इसलिए मेरे को नहीं चलता ऐसा। मैंने कहा देखो बाबा को तकलीफ होती है, अगर मैं रह जाऊं तो बाबा को अच्छा ही नहीं लगेगा ना, इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। मैं जाना चाहती नहीं हूं परंतु मेरे को जाना पड़ता है इसलिए जाती हूं। तो हमें भी क्या महसूस करना है, मेरे बिना नहीं चलेगा सेंटर पर, सेंटर पर मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, ऐसी जिम्मेदारी हमें अपने आप में महसूस करना है। मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। एक बार माताओं के क्लास में ही मैंने बताया था, सबको बड़ा मजा आया था। जैसे हमें स्लोगन मिला है बाबा का, क्या कहते बाबा मैं हूं ना, है ना, है ना, सबके पास बाबा के बच्चे मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या कहना है, क्या कहना है, बाबा मैं हूं ना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पक्का। अच्छा सब क्या सोचेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, बाबा मैं हूं ना, तुम्हारा सब कार्य हुआ पड़ा है, मैं हूं ना, मालिक बनाया है ना। इसी भाव से कल बाबा ने कहा था ना, मालिकम सलाम। तो ऐसी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। दूसरी बात, दूसरा स्वमान, मैं बाबा का राइट हैंड हूं। एक है कार्य करना और एक है राइट हैंड बनकर के कार्य करना। कभी कभी कार्य करते करते यही मुसीबत आ जाती है हमारे मन में, जैसे कहा ना परीक्षा तो आती रहती है, तो एक बड़ी परीक्षा ये है कि अहम भाव। अहम भाव जब आ जाता है तो बहुत बड़ी परीक्षा है, तो हम थोड़ा श्रीमद से डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, हमें क्या याद रखना है, मैं बाबा का राइट हैंड हूं। राइट हैंड अर्थात हाँ दाया हाथ, वो ज्यादा काम करता है और जैसे चाहते हैं वैसे तुरंत करता है, जैसे हम चाहते हैं वैसे करता है। तो बाबा का भी हम राइट हैंड अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलकर के कार्य करना है। केवल कार्य करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु श्रीमत अनुसार करना वो इम्पोर्टेंट है। तो सदा याद रहे इस स्वमान कि मैं बाबा का राइट हैंड हूं, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। इसलिए हमारे मुख से क्या निकले हमेशा, जी है ना, जी किसका यादगार है, मम्मा का यादगार है, मम्मा का यादगार है ना, हाँ हाँ जी, हाँ जी भी नहीं, जी देखो जी शब्द भी हाँ जी भी थोड़ा देरी लगता है, जी। ये भाव को आप अपने मन में लाओ, ये भाव को मन में लाओ, है ना, मुझे ज्यादा समझ आता है, हम ज्यादा अनुभवी हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत सेवा कर लिया है ना, नहीं, इसमें अहम भाव और अपने ही कार्य के प्रति ममत्व भाव आ जाता है। तो मन हमेशा तैयार रहे इस बात के लिए कि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। आप जो कहे जो कहे। अंत में एक छोटी सी बात अनुभव की बता देती हूँ। इसी हॉल में एक बार मीटिंग थी, बहुत साल पहले की बात है, इस हॉल में मीटिंग थी, हमें दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मेला करना था, उसके बारे में मीटिंग थी। तो और बाबा की मूल्यां चलती है कि तुम्हें लाल किले के पर अपना ध्वज लहराना है ना, तो इसीलिए सभी दादियां और सभी बहने तो कहे कि नहीं हमको तो लाल किले पर ही करना है, वहीं करना है। अच्छा जगदीश भाई जी जो तो दिल्ली रहते थे उनको ज्यादा पता हर बात का, तो उन्होंने कहा कि भाई वो लाल किले वाला मैदान है, उससे और अच्छा मैदान हमको मिल रहा है, वहां पर हम करते हैं, वहां पर सेवा भी ज्यादा होगी, लोगों को ज्यादा संदेश मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत आधा घंटा एक्सप्लेन किया। बोला इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग वो मैदान में करेंगे। तब भी दादी कहते नहीं, हम तो लाल किले पर ही करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। अब देखो, दो चार बार सबको समझाने का प्रयत्न किया, कहते ना 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 ना, बाबा जो कहता ना वही हम तो करेंगे लाल किले पर ही। जगदीश भाई ने दो हाथ जोड़ के बोला, नमस्कार माताएं, जो आप कहेंगे वही होगा। अब देखिए, इतना बुद्धिशाली, इतना सब कुछ पता होते, आखिर उसने सरेंडर किया, अच्छा दादियां माताएं आप जो कहते हैं वही होगा, आज्ञा करें। और फिर भी हर जिम्मेदारी से वो कार्य निभाया। कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, हम सजेशन देते हैं परंतु वो सजेशन अगर नहीं माना गया तो क्या हो जाता है, फिर हम इंटरेस्ट से काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा फिर करो, अपने आप करो, मेरा कहना नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, और वो मन में रहेगा, चलो थोड़ा सहयोग कर भी देंगे, इतना तो हम नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे कार्य, पर तो भी अंतर रहेगा, उतना दिल से नहीं करेंगे, मेरा कहना नहीं माना ना, तो उस समय मैं आज्ञाकारी बच्चा नहीं। क्या याद रखना है, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा। तो ये तीन स्वमान याद रखिए, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहने के लिए। कौन से तीन? पहली बात, मैं जिम्मेदार आत्मा हूँ। दूसरी बात, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। और तीसरी बात, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। ठीक है, तो फिर बाबा का कार्य जो बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया है, हम भी बाबा को कहें बाबा मैं हूं ना, क्या याद रखेंगे, बाबा मैं हूं ना, हम जल्दी ही आपको प्रत्यक्ष करके रख देंगे। यानी इसके लिए दोनों चाहिए, अपनी स्थिति भी चाहिए और सेवा का उमंग भी चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति। अपनी स्थिति और सेवा के उमंग उत्साह को जागृत दीदी ने कर दिया, और मैं तो ये समझूंगी ये तो बहुत याद रहेगा, मैं हूं ना तो याद करेंगे, और बाबा से तो अधिकार से ही तो सब कुछ बातें करनी है। तो दीदी जी का हम दिल से बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अदा करते हैं। दीदी आपने सेवा के प्रति और हमारी रियल में जिम्मेवारी क्या है वो इतना सहज और सरल शब्दों के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी बात स्पष्ट की है फिर से दीदी जी का हम करतल ध्वनि से धन्यवाद अदा करते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी दो मिनट बाबा को याद करेंगे और उसके बाद
सारे बिट के भी पूरे करें परमानंद।